दिन भर 27 मार्च दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदर। केंद्र सरकार ने जीएसटी से संबंधित विधेयक संसद में पेश किए।
चाहे जितनी गुड्स हैं, सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो पूरे देश भर में खुले रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ेगी, जो कमजोर राज्य हैं उनको इससे और अधिक लाभ होगा।
क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश के छात्र एंटी रोमियो स्क्वाड्स के बारे में?
कॉलेज जाने से पहले भी सोचा जा रहा था, अगर कहीं हम अपने फ्रेंड के साथ बाहर निकलने लगे तो कहीं हमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर ले, बोलने लगे कौन हो, क्योंकि वो लोग तो रिलेशन पूछ ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट अरेस्ट कर रहे हैं और मार रहे हैं।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जुड़े चार बिल पेश कर दिए। इन बिलों को संसद में मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य के जीएसटी बिल राज्य की विधानसभाओं में पेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से जीएसटी बिल पास करने के लिए शुक्रिया अदा किया। कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई थी कि जीएसटी बिल 1 जुलाई से लागू होने की संभावना बन रही है। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं, इस मामले में चल रही बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मुद्दा केंद्र और राज्य सरकार आपस में बात करके सुलझाएं। चीफ जस्टिस जेएस खेर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एसके कॉल की बेंच ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार आपसी बातचीत से इस मामले को सुलझाएं और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करें। रूस के मुख्य विपक्षी नेता एलेक्सी नावाल्नी को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। नावाल्नी को रविवार को मॉस्को में भ्रष्टाचार विरोधी एक प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। नावाल्नी के अलावा प्रदर्शन में शामिल कम से कम 500 लोगों को भी हिरासत में लिया गया था। मॉस्को की एक अदालत ने प्रतिबंध के बावजूद प्रदर्शन का आयोजन करने के लिए नावाल्नी पर 20,000 रूबल्स का जुर्माना भी लगाया है। नावाल्नी ने रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उनके इस्तीफे की मांग की और फिर ये प्रदर्शन किए। उन्होंने अदालत में प्रधानमंत्री मेदवेदेव को गवाह के तौर पर बुलाने की मांग की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। नावाल्नी ने अदालत के इस कार्रवाई की निंदा की है। ये सबसे तेज मुकदमा था। इन लोगों ने कोई गवाह को नहीं बुलाया और ना ही हमारी किसी गुजारिश को सुना है। न्याय का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। लगता है इन्हें बस जल्दी मुकदमा निपटाना है। ये थे एलेक्सी नावाल्नी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश के सिलहट में 4 दिनों से एक इमारत को संदिग्ध चरमपंथियों से छुड़ाने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान आज 4th दिन भी जारी है। रविवार को सुरक्षा बलों ने 2 चरमपंथियों को इस कार्रवाई में मार गिराया था। शनिवार को सिलहट की इस इमारत के पास 2 बम धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। अभी तक संदिग्ध हमलावरों की पहचान के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। म्यांमार में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के कारण विस्थापित 75,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिमों के मुद्दे पर म्यांमार के सेनाध्यक्ष ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई का बचाव किया है। सेनाध्यक्ष मिंग ओंग यांग ने कहा कि रोहिंग्या मुस्लिम लोग म्यांमार के में प्रवासी थे और देश की सुरक्षा करना सेना की जिम्मेदारी है। मिन ओंग यांग ने ये कहा। हमने पहले भी दुनिया को बता दिया है कि रोहिंग्या हमारे देश में नहीं है। जो बंगाली लोग राखिन राज्य में रहते हैं वो म्यांमार के नागरिक नहीं हैं, वो बाहर से आकर यहाँ रह रहे हैं। जब देश की स्वायत्तता पर राजनीतिक, धार्मिक या फिर कट्टरवाद की समस्या आती है तो हमें कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। ये थे मिंग ओंग यांग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया साइट फेसबुक ने कथित इस्लामिक विरोधी सामग्री को हटाने के लिए कदम उठाए हैं और इस तरह की 85% सामग्री को हटा भी दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने ये स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध इस समस्या का समाधान नहीं है। हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर सरकार ईश निंदा से जुड़ी कथित सामग्री को सोशल मीडिया साइट से हटाने में विफल होती है तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से संबंधित 4 सहायक विधेयक आज संसद में पेश कर दिए हैं। इस पर लोकसभा में बुधवार से बहस शुरू होगी। केंद्रीय सरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागू करना चाहती है। जीएसटी है क्या, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? लीजिए सुनिए इस पर एक रिपोर्ट जुबैर अहमद से।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में जीएसटी से जुड़े 4 बिल पेश कर दिए, जिनमें सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरिटरीज जीएसटी और मुआवजा कानून जीएसटी शामिल हैं। इन बिलों को संसद से मंजूरी मिल जाने के बाद राज्य जीएसटी बिल राज्य विधानसभाओं में पेश किए जाएंगे। आज पेश किए गए सभी मनी बिल यानी धन संबंधी विधेयक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा राज्यसभा के सुझावों को मंजूर कर सकता है या उन्हें रद्द भी कर सकता है। कांग्रेस और विपक्ष की कई पार्टियों ने इस बिल का पहले कड़ा विरोध किया था। विपक्ष का विरोध इतना कड़ा था कि इसकी आवाज़ें संसद में भी गूंजा करती थीं। ये पिछले साल की बात है। उन दिनों शोर शराबा इतना होता था कि सुमित्रा महाजन, जो लोकसभा की स्पीकर हैं, उन्हें ये कहना पड़ा कि ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच एक लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद बिल को पारित करने का रास्ता साफ हो गया और पिछले साल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इसे पारित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सबका शुक्रिया अदा किया था।
मैं इस समय एक सरकार से सभी राजनीतिक दलों का, सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो सरकारें चल रही है उन सबका धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ।
बहुत लोगों के जहन में ये बात हो सकती है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी क्या बला है। आम तौर से हम सरकार को 2 तरह के टैक्सेस देते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स यानी वो टैक्स जो सरकार हमसे सीधे तौर पर ले लेती है, यानी कि आयकर, इनकम टैक्स, और दूसरे कई तरह के टैक्सेस होते हैं जिन्हें हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। वो टैक्स भी हम ही अदा करते हैं लेकिन सीधे तौर पर नहीं। जैसे कि खरीदी गई चीज़ों पर दिए गए जो टैक्स लगते हैं, यानी कि सेल्स टैक्स, सर्विसेज टैक्स या लग्जरी टैक्स, वो भी हम देते हैं लेकिन सीधे तौर पे नहीं। वो वस्तुओं पर हम देते हैं और वो टैक्स अदा करने की जिम्मेदारी हम पे नहीं होती है बल्कि दुकानदारों पे या मैन्युफैक्चरर पे होती है। इस तरह के 19 टैक्स हैं। जीएसटी इन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक साथ लाने का नाम है। यानी आप गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अब अलग अलग टैक्स के बजाय एक ही टैक्स देंगे और विशेषज्ञों के अनुसार ये टैक्स 18% हो सकता है। इसके फायदे गिनाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली कहते हैं,
चाहे जितनी गुड्स हैं, सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो पूरे देश भर में खुले रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ेगी, जो कमजोर राज्य हैं उनको इससे और अधिक लाभ होगा, देश की जीडीपी से को भी लाभ होगा।
इसका अधिकतर नुकसान सेवा उद्योग को यानी सर्विसेज इंडस्ट्री को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी सर्विसेज इंडस्ट्री केवल 15% टैक्स देती है और जीएसटी लागू होने के बाद ये 18 या 19% हो सकता है। केंद्र सरकार इन बिलों को जल्द से जल्द लोकसभा से पारित करवा लेना चाहती है ताकि उसके बाद उसे राज्यसभा से मंजूरी मिल जाए और 1 जुलाई से सारे देश में जीएसटी लागू कर दिया जाए। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के विरोध में आज से मांस व्यापारियों ने राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। राजधानी लखनऊ समेत तमाम जगहों पर मुर्गे और मांस की बिक्री बंद रही। व्यापारियों का कहना है कि उनके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है और प्रशासन जानबूझकर परेशान कर रहा है, जबकि सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि अवैध बूचड़खानों को बख्शा नहीं जाएगा और वैध के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
राजधानी लखनऊ समेत राज्य भर में मीट और मुर्गा व्यवसायियों ने सरकारी फरमान के खिलाफ आज हड़ताल की और कई जगह प्रदर्शन किए। सरकार की कार्रवाई अवैध बूचड़खानों के खिलाफ है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन के लोग जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। गाजियाबाद की एक मार्केट में जहां बड़ी संख्या में दुकानों पर मुर्गे और बकरे का गोश्त बिकता है, शाम के वक्त सन्नाटा छाया हुआ था। दुकानदार दुकानें बंद करके बाहर बैठे हुए थे।
प्रशासन कह गया है ये बिल्कुल बंद रखो जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता।
क्या मसला, कौन सा
मसला? वो गुछड़ खाने का मुर्गे बकरे पे थोड़ी है, हम उनसे कहने सवाल करें आते डंडा बजाना शुरू कर देते हैं।
ऐसा यहाँ पुलिस वाले आवेदन वसूली कर ले हैं, अब हम परेशान हैं, हम क्या करें? हमारा तो चार पुस्तों से ये काम चला रहा है, अब इन्होंने एकदम नया नियम कल लागू कर दिया। हमें महीने का 20 दिन का टाइम देना चाहिए था कि आप लेसन बनवा लो, लेसन जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हमारा कोई लेसन नहीं बना रहा। हमारा तो भैया अगर 10 दिन बंद रह गए, हम तो रोज कुआ खोदते हैं, रोज पानी पीवे, हमारे बच्चों कहाँ जाएं? 200-500 रुपए कमाने वाले आदमी हैं।
इसके अंदर एक ये मुसलमान ही परेशान नहीं है, हिंदू बिरादर का भी हर आदमी परेशान है, बेरोजगार हो गए, सारे आदमी बेरोजगार हो रहे हैं ना, हिंदू हो या मुस्लिम हो, खाने वाले जितने मुसलमान नहीं है जितने हिंदू बिरादर के खाने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़ खानों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में मांस व्यापारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रखी है। हालांकि इक्का दुक्का दुकानें कई जगह खुली हुई मिली लेकिन ज्यादातर दुकानें आज बंद रहीं। मांस विक्रेताओं की हड़ताल में अब मछली कारोबारी भी शामिल हो गए हैं। यही नहीं, इसका असर उन तमाम रेस्तरां में भी हो रहा है जहां मांसाहारी भोजन बनता है। इस बीच सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि कार्रवाई सिर्फ अवैध बूचड़ खानों पर ही होगी। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह,
ये जो कार्रवाई है वो अवैध बूचड़ खानों के ऊपर ही है। अवैध जिनके पास लाइसेंस है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, लाइसेंस का उन्हें पालन करना आवश्यक है, जो कि पिछले 2 साल से केंद्र व्यवस्था के तहत NGT ने आपको कहा हुआ है, समय आपको पर्याप्त मिला था।
लेकिन व्यापारियों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी जबरन दुकानें बंद करा रहे हैं। लाइसेंस के सवाल पर व्यापारियों का कहना था,
नहीं लाइसेंस ले रखे हैं लेकिन लाइसेंस हमारे अभी तक रिन्यूअल नहीं हुए, 3 साल हो गए, हम परेशान हो रहे हैं। कोई 50,000 मांगता, कोई 10,000 मांगता, कोई 5,000 मांगता।
2015 से उसके बाद में रिन्यू नहीं हो रहे, लाइसेंस तो हैंगे, तो वो जब रिन्यू नहीं हो रहे तो क्या होगा उनका?
तो क्यों रिन्यू क्यों नहीं हो रहे कुछ तो बताएं।
ऊपर से ये ऑर्डर है, वो तो उनका क्या है कारण बताते ही ना, जाते हैं चक्कर काट के आ जाते हैं। हम तो भरने को तैयार हैं, हमारा रिन्यू करवाओ, पैसे जितने हैं ले, जो भी साल के जाते हैं।
इस बीच ऐसी भी खबरें मिल रही हैं कि कई जगहों पर कुछ संगठनों के लोग भी जबरन दुकानें बंद करा रहे हैं। गाजियाबाद के सम्राट चौराहे पर स्थित मुर्गा मार्केट के कुछ व्यापारियों की भी ये शिकायत थी।
किसी मुर्गे में कुछ नहीं आता है, एग्रीकल्चर में सरकार ने घोषित कर रखा, उसके बावजूद पुलिस वाले या और बजरंग दल शिवसेना वाले आकर जबरदस्ती दुकान बंद करवा रहे हैं।
शिवसेना वाले आते हैं, RSS वाले आते हैं, बदतमीजी करते हैं, दुकान बंद करा देते हैं।
योगी जी ने ऐसा नहीं कहा कुछ, लेकिन जो पुलिस वाले प्रशासन है, जो आवेद जो शिवसेना बजरंग दल वाले हैं, वो परेशान कर रहे हैं।
वहीं लखनऊ में मीट मुर्गा व्यापारी कल्याण समिति का कहना है कि सरकार जब तक अपने आदेश को वापस नहीं लेती हड़ताल जारी रहेगी। बहरहाल हड़ताल अभी शुरू हुई है लेकिन मांस की दुकानें पिछले कई दिनों से बंद चल रही हैं। सरकार सिर्फ लाइसेंस वाली दुकानों को ही इजाजत देने पर अड़ी है, तो व्यापारी अपने लाइसेंस के नवीनीकरण न करने का सरकारी अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि यह मसला जल्दी सुलझता है या फिर अभी और आगे खींचता है।
समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुए एंटी रोमियो दल जितनी तारीफ बटोर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आलोचना भी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि ये दल मर्सी से एक साथ घूम रहे लड़के लड़कियों को परेशान नहीं करेगा। पर इससे वो कितने आश्वस्त हैं जिनकी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है, उन्हीं छात्र छात्राओं की राय जानने के लिए BBC संवाददाता दिव्या आर्य पहुंची गाजियाबाद।
हम हैं गाजियाबाद में और बहुत सारे कॉलेज की लड़कियां और लड़के हमारे साथ हैं और इनसे हम बात कर रहे हैं एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में, जो पिछले हफ्ते यूपी सरकार ने शुरू किया है। यूपी सरकार का कहना है कि इसका मकसद है कि जब लड़के लड़कियों की छेड़छाड़ करें तो उसे रोका जा सके।
देखिए वैसे तो ये अच्छा है लेकिन बुरा भी है, जैसे कि लड़के छेड़ते हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए, और जैसे कि कुछ लड़कियां कुछ लड़के अपनी मन मर्जी से कहीं जा रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, और पुलिस उनको भी कर रही है और जो छेड़ रहे हैं उन सबको भी कर रही है।
यानी ठीक से अभी आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, गलत लोगों को भी टारगेटिंग हो रही है, जैसे कि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, आपने भी कहीं सुना है किस तरह से गलत टारगेट किया गया?
मैम ऐसे क्या गया, जैसे कोई बंदा सामने मतलब सड़क पे जा रहा है या कहीं पे जा रहा है, बस देखा सीधा पकड़ा और उन्हें थाने में ले जाकर वहाँ से बातचीत की गई है। ऐसा होना चाहिए, मतलब पुलिस ने ये काम किया अच्छा किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें ये भी देना चाहिए कि उनको किस तरीके से काम करना है, पुलिस को किस तरीके से बंदे के साथ उसका बिहेवियर करना है, पुलिस को जाना चाहिए, उसके साथ आराम से बात करनी चाहिए।
और अभी हम लास्ट फ्राइडे कॉलेज से घर जा रहे थे तो PCR जा रही थी, तो उन्होंने हमें कहा यहाँ क्यों खड़े हो, हम तो बस का वेट कर रहे थे।
आपके साथ लड़कियाँ थी?
नहीं, हम सारे बॉयज थे।
सब बॉयज थे।
चार बॉयज थे, जब भी हमें ऐसे उन्होंने जीप रोकी अपनी, फिर अनाउंस करा गया यहाँ से चले जाओ जल्दी, अब हम तो बस का वेट कर रहे थे घर जाने के लिए।
तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो इतनी बात हो रही है, तो क्या आप एक हफ्ता हो गया कुछ सोच के घर से निकल रहे हो कि किससे मिलना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, क्योंकि इस तरह के स्क्वाड घूम रहे हैं?
हाँ, मन में ये सब घूम रहा था, सोचा था कहीं पार्क जाएंगे, लेकिन पार्क जाने से पहले ये सोचा कि वहाँ कोई पुलिस होगी या कोई ऐसा रूल होगा, कहेंगे घर जाओ वापस या तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे या ये कर देंगे। तो बहुत से मन में सवाल उठ रहे थे कि अपने घर ही रहो, बस कहीं मत जाओ। कॉलेज जाने से पहले भी सोचा जा रहा था अगर कहीं हम अपने फ्रेंड के साथ बाहर निकलने लगे तो कहीं हमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर ले, बोलने लगे कौन हो, क्योंकि वो लोग तो रिलेशन पूछ ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट अरेस्ट कर रहे हैं और मार रहे हैं, तो ये सब गलत है।
अच्छा, तो क्या ये जो इतनी पूछताछ हो रही है उससे तुम्हें कोई फर्क दिखता है पिछले एक हफ्ते में, छेड़छाड़ कम हुई हो या लड़के कम सीटी मार रहे हो?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसा हो रहा था ऐसे ही हो रहा है, अभी अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जो कुछ चेंज हुआ है, इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा है ठीक से कोई भी। और इस बात की हंसी हो ज्यादा उड़ाई जा रही है कि ये हो रहा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे,
छेड़छाड़। तो मतलब ये जितने लड़के हैं जो पीछे भी खड़े हैं एंटी रोमियो स्क्वाड की, वैसे आपके मन में डर आ गया है क्या पुलिस का?
नहीं, वैसे तो हम लड़कियां छेड़ते नहीं है, पर जब से ये सीन आया थोड़ा बहुत हो गया है कि हाँ यार, अगर सोच रहे भी हो तो ये करना मत। और वैसे गलत क्या है कि अगर हमारे साथ कोई गर्लफ्रेंड भी अपनी मर्जी से आ रही है, उसको भी पकड़ के जबरदस्ती ले जा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से, अभी संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। हमारे पास राइट्स हैं अपने लेंगे, हम अडल्ट हैं, हम अगर लड़की 18 की और लड़का 21 का है तो हम घूम सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें पकड़ा जा रहा है, तो ये गलत है ना, हम अपनी मर्जी से बाहर क्यों नहीं जा सकते? सिर्फ मॉल में सेफ है, मॉल में भी क्यों सेफ है? अंदर जाके भी पकड़ो, मूवी देखते हो को भी उठाओ, बाहर पार्क में हम बैठे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है बाहर बैठ के, वहाँ भी नहीं बैठ सकते, अब कैसे गर्लफ्रेंड को डेट करें अपनी मर्जी से, बताइए।
अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ये सब लड़कियों की सुरक्षा के लिए है, सेफ्टी के लिए है, तो आप जब कॉलेज वाले जाते हैं तो आपको लगता है इस तरह की चीज से आपको मदद मिलेगी? आपको
लड़कों के सेफ्टी के लिए कुछ नहीं लगता, क्योंकि लड़कियां अपनी सेफ्टी खुद कर सकती हैं। क्या हम कहीं पर भी जाएं सब हमारे साथ होंगे? ऐसा नहीं है कि हर वक्त पुलिस हमारे साथ हो या हमारा कोई भी हमारी सेफ्टी करने के लिए हमारे साथ हो, क्योंकि कुछ वक्त ऐसा होता है कि हमें केरला जाना होता है। मेरे डैड हैं जो मतलब जॉब करते हैं, मेरे भाई बहुत छोटा है, कहीं पे जाते हो तो कोई मेरे साथ नहीं होता, पापा बोलते हैं हमेशा कि तुम्हें अपना काम खुद ही करना चाहिए, क्योंकि आप बड़े हो और पढ़े लिखे भी हो, इसका पढ़ाई लिखाई का कुछ फिर फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए ज़्यादातर मैं काम खुद ही करती हूँ। अगर ऐसा होगा तो मैं तो फिर कभी भी नहीं जा पाऊँगी, सब काम को अपने मतलब हार मार के घर में बैठ जाऊँगी, इससे तो कोई हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला, ओनली लॉस ही होगा।
सुरों की माला जब गुंथती है तो बनता है गीत। फिल्मी दुनिया के वो गीत कैसे बने जो अमर हो गए।
आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है।
कैसे रची रचनाकारों ने धुने और कैसे हुआ गायकी का कमाल। संगीत की मिठास से सराबोर धुनों के बुनने और गुनने की कहानी, बीबीसी हिंदी की विशेष श्रृंखला संग संग गुनगुनाओगे।
संग संग तुम भी गुनगुनाओगे।
संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र से सुनिए हर रविवार दिन भर कार्यक्रम में।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। भारत प्रशासित कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के दो चरमपंथियों की मौत के खिलाफ जिला पुलवामा में आज हड़ताल की गई और सुरक्षा बलों और लोगों के बीच झड़पें भी हुईं। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
हिजबुल मुजाहिदीन के दो संदिग्ध चरमपंथियों की मौत के बाद पुलवामा में सोमवार को स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों में झड़पें हुईं, जिन झड़पों में कई लोग घायल बताए जाते हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए श्रीनगर ले जाया गया है। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने टायर गैस के गोले दागे। मारे गए चरमपंथियों के जनाजों में हजारों लोग शरीक हुए और आजादी के हक में नारे लगाए।
Oh, my God.
लोगों की नमाज जनाजा में भारी भीड़ को देखते हुए दोनों ही चरमपंथियों का जनाजा कई बार पढ़ा गया। दोनों ही चरमपंथियों की मौत के खिलाफ पुलवामा में आज मुकम्मल हड़ताल हुई। बीते दो महीनों में दक्षिणी कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग झड़पों में एक दर्जन से ज्यादा चरमपंथियों को मारा गया है, जबकि सुरक्षा बलों को भी इन झड़पों में नुकसान उठाना पड़ा है। दक्षिणी कश्मीर चरमपंथ का गढ़ माना जाता है। दक्षिणी कश्मीर में 9 अप्रैल को उपचुनाव होने जा रहे हैं और पुलिस का दावा है कि दक्षिणी कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को चौकन्ना किया गया है। माजिद जहांगीर, बीबीसी हिंदी, श्रीनगर।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं राजेश जोशी और सुशीला सिंह।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं सुशीला सिंह, उनका भी
नमस्कार
स्वीकार करें। जी सुशीला जी, आपके पास बहुत सारे ईमेल्स हैं मैं देख रहा हूँ, चिट्ठियां भी हैं। मैं चाहता हूँ कि आज आप पूरी पूरी चिट्ठियां पढ़ने के बजाय ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के नाम शामिल करें और संक्षेप में उन्होंने क्या कहा है उनकी बात को रखें।
जी, सबसे पहले मैं ईमेल से ही शुरुआत करना चाहूंगी। ये हैं अरुण कुमार, जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से लिखते हैं कि जनता पार्टी पर रिहान जी की विवेचना और साथ में बीबीसी का स्पष्ट प्रसारण कार्यक्रम दिलो दिमाग पर छा गया।
यही तो सुनने को कान बीबीसी नहीं, हमारे कान तरस गए थे सुनने के लिए कि बीबीसी का स्पष्ट प्रसारण छिंदवाड़ा में सुनाई पड़ रहा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हमारे पास अभी भी सुशीला जी कई शिकायत आती है कि प्रसारण सुनने में मुश्किल होती है। जैसे मेरे सामने एक ये 6 पन्नों की चिट्ठी है,
बहुत लंबी चिट्ठी है,
लंबी चिट्ठी है, और इन्होंने अपनी 2 फोटो भी भेज रखी हैं, दिखा तो नहीं सकता हूं। इनका नाम है हाजी मोहम्मद शफी साहब और इन्होंने ये शिकायत की है कि साहब ये महाराष्ट्र से, इन्होंने लिखा है जिला सतारा से। बहुत देखिए साफ साफ समझ में नहीं आ रहा इन्होंने क्या लिखा, लेकिन लिखते यही है कुल मिला के चिट्ठी को, जितना मैं समझ पाया हूँ कि प्रसारण साफ साफ सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन छिंदवाड़ा में सुनाई पड़ रहा है। अब ये थोड़ी मुश्किल है हमारे सामने कि हम क्या करें क्या ना करें, फिर भी कोशिश जारी है।
और इससे ये भी जाहिर होता है राजेश जी कि हम हर चिट्ठी को जो है पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे हैंडराइटिंग साफ हो या ना हो। दूसरा ईमेल है अखलाक मिर्जा का, ये सलाह दे रहे हैं कि अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता बनाए रखें क्योंकि भारत में मीडिया सच नहीं बताता पर आप सच बताते हैं।
अखलाक मिर्जा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीबीसी पर आपका भरोसा ही है कि जो हमें काम करने के लिए प्रेरणा देता है, हमारे श्रोता जो आप जैसे हैं वही हमें तटस्थ रूप से काम करने की प्रेरणा देता है।
जी, उत्तराखंड में कसार देवी अल्मोड़ा से दीपक सिंह मेहरा लिखते हैं कि इन्हें रविवार को दिन भर कार्यक्रम पसंद आया और संगीतकार नौशाद पर प्रसारित कार्यक्रम बेहद अच्छा
जी
लगा।
ये यतीन्द्र मिश्र की वो श्रृंखला की बात कर रहे हैं जिसमें नामी गिरामी संगीतकार हैं हिंदी फिल्म संगीत के या सिनेमा जगत के, उनके बारे में जो सीरीज शुरू की है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ये आगे आने वाले रविवार को हम प्रसारित करेंगे और उसके बाद हर हफ्ते प्रसारित होगी। इसके बारे में और भी चिट्ठियां आगे हो सकता
है। जी, इसके अलावा इसी कार्यक्रम की जो है तारीफ शिव बालक सिंह ग्राम झंडी पोस्ट निघासन जिला खीरी यूपी से भी की
करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिनको ये कार्यक्रम पसंद आया।
जी, लेकिन शेरा राम डूटी गांव सांगणा से लिखते हैं कि 25 मार्च के इंडिया बोल कार्यक्रम में निष्पक्षता खोती लगी, यथार्थ कार्यक्रम संचालन नव निर्वाचित सरकार के खिलाफ बोलते लगे, इसलिए मेरी बीबीसी के सभी एक्सपर्ट से एक अनुरोध है कि ऐसा भविष्य में होने से या कहने से बचे ताकि बीबीसी के प्रति जुड़ी इन आकांक्षाओं का सम्मान
हो सके। इंडिया बोल को लेकर के और भी आलोचना है, मैं जब ईमेल देख रहा था चिट्ठियां देख रहा था तो बहुत सारे श्रोताओं को, तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन कुछ श्रोताओं ने जरूर एतराज किया है कि इस बार का जो इंडिया बोल था उस पर उनको ऐसा लगा कि बात पूरी कहने का मौका नहीं दिया गया है। लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर भरोसा दिला सकता हूं कि ये अगर ऐसा आपको लगा, ये आपकी राय है और हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके पीछे कतई भी कोई जानबूझकर के इस तरह की बात नहीं की गई जिससे कि लोगों को लगे कि हम किसी का पक्ष ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। कई बार प्रोग्राम की भागम भाग में इस तरह का होता है कि श्रोता को लगने लगता है कि जानबूझ के कुछ बातें कही गई हैं, हालांकि हमने दोनों पक्षों को मौका दिया था। यहाँ प्रोफेसर सतीश प्रकाश आए थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लाइन पे मौजूद थे।
जी, इसके अलावा और भी कई चिट्ठियां हैं जो इंडिया बोल पर ही भेजी हैं लोगों ने। ये है जगत सिंह धामी की चिट्ठी, गांव जुमा तहसील धारचूला जिला पिथौरागढ़ से। ये लिखते हैं कि इस बार का इंडिया बोल अच्छा लगा जो यूपी की योगी सरकार के कामकाज पर था। कृपा मुझे बताएं कि क्या बीबीसी के कार्यक्रम पुनः प्रसारित किए जाते हैं।
कुछ श्रोताओं की तरफ से आलोचना आई है तो कुछ श्रोताओं को ये कार्यक्रम पसंद भी आया है, तो हम तो समान भाव से आलोचना को भी और तारीफ को भी देखेंगे, लेकिन इस बात की कोशिश जरूर रहेगी कि हमारा कार्यक्रम बिल्कुल तटस्थ रहे और उसमें कहीं किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश न रहे।
समय भी अब बस हम अंत की ओर हैं, समय तो एक अच्छे मूड के साथ एक चिट्ठी ली जाए। इलाहाबाद से अमन श्रीवास्तव लिखते हैं कि जनता पार्टी पर रेहान फजल की विवेचना अच्छी लगी और उन्होंने बीबीसी हिंदी सेवा को शुक्रिया अदा किया है कि इनका जो पिछली बार ईमेल पढ़ा गया था, इन्होंने लिखा था और पहला पढ़ा गया था, उन्होंने रिवाइंड कर करके उन्हें उस ईमेल को सुना है, तो इसके
और मैं देख रहा हूं कि उन्होंने अपने परिवार वालों को सुनाया और अपने दोस्तों को सुनाया। तो दोस्तों, यही हमें ताकत मिलती है आपकी चिट्ठियों से, आपकी आलोचना से और आपकी प्रशंसा से। लिखते रहिए, हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल लिखना चाहें तो है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
भारत को बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीतने के लिए 106 रनों का लक्ष्य मिला है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के 19 रन बना लिए हैं। चौथे दिन भारत को जीत के लिए 87 रनों की जरूरत है। सुमिरनप्रीत कौर की रिपोर्ट।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच चल रहा है धर्मशाला में। ऑस्ट्रेलिया ने जीता था टॉस और निर्णय लिया था बल्लेबाजी करने का। पहली पारी में बनाए ऑस्ट्रेलिया ने 300 रन, पहली पारी में भारत ने बनाए 332 रन। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 150 रन भी नहीं बनाए और ऑल आउट हो गए, उन्होंने बनाए 137 रन। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक स्थिति ये है कि जवाब में भारत ने 19 रन बना लिए हैं, 10 विकेट भारत के पास हैं और दो दिन का खेल अभी बाकी है। ओपनिंग बैट्समैन है केएल राहुल और मुरली विजय। भारत की स्थिति काफी मजबूत है और इस बारे में बात कर रहे हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर विजय दहिया।
जिस तरीके से पूरा खेल चला है ना, बहुत ही बढ़िया है टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए। ये पड़ला कभी किसी का भारी, कभी किसी का भारी, और टेस्ट मैच क्रिकेट इस तरीके की आप देखना चाहते ना, देखने में बड़ा मजेदार लगा आज का खेल। और अगर इस जीत को पाने में कामयाब रहते हैं तो ये बहुत खास जीत रहेगी उन खिलाड़ियों के लिए जिनको विश्वास दिया गया है पिछले कुछ समय में। और बिना विराट कोहली के अगर आप जीतेंगे ना, तो फिर ये एक और बड़ी जीत होगी हर खिलाड़ी के लिहाज से। और उसको आगे आने वाले समय में कि हम किसी के ऊपर सिर्फ तारोमदार नहीं रह सकते, हम खुद इस लायक हैं कि अपनी टीम के लिए एक जीत हासिल कर सकते हैं।
भारत की पहली पारी में कोई भी बल्लेबाज 70 से ज्यादा रन नहीं बना पाया, भारत ने बनाए 332 रन। तो भारत की इस मजबूत स्थिति में एक अहम रोल रहा बॉलर्स का। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में जहां कुलदीप यादव ने 6 विकेट लिए, वहीं दूसरी पारी में कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट चटकाए। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में रविचंद्रन अश्विन ने लिए 3 विकेट और रविंद्र जडेजा ने लिए 3 विकेट। उभरते हुए गेंदबाज कुलदीप यादव के बारे में बात कर रहे हैं विजय दहिया।
ये एक दोहरी तलवार होती है, जब आप एक युवा खिलाड़ियों की शुरुआत अच्छी करें ना, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है, आपको ऐसे खिलाड़ियों के साथ पेशेंस रखने पड़ेंगे। आप पेशेंस रखेंगे तो आगे आने वाले समय में कुलदीप आपके लिए मैच विनर होंगे, क्योंकि जो इस तरीके के खिलाड़ी होते हैं ना, वो सीधा मैच विनर होते हैं जो उन्होंने पहली इनिंग में किया। ये टेस्ट मैच बिल्कुल बदल सकता था, 140 पे एक था ऑस्ट्रेलिया, कहीं वो पहली पारी में 450-550 रन बना देता तो फिर भारतीय टीम पीछे ही रह जाती। इसलिए शानदार प्रदर्शन उनका पहली पारी में, और दूसरी पारी में जो अनुभवी खिलाड़ी हैं उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और भारतीय टीम को ड्राइविंग सीट पर रखा हुआ है।
अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो चौथा टेस्ट मैच चल रहा है उसका चौथे दिन का खेल शुरू होगा कल। श्रृंखला 1-1 से बराबर है, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत में जो भी अब टेस्ट मैच जीतेगा ये सीरीज उसके नाम होगी। फिलहाल तो भारत की पकड़ इस टेस्ट मैच पर काफी मजबूत है।
और सभा के अंत में नजर दौड़ाते हैं मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में जीएसटी से जुड़े 4 बिल पेश कर दिए हैं। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों को अल्पसंख्यकों का दर्जा देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मुद्दा आपस में बात करके सुलझाने को कहा। मॉस्को में भ्रष्टाचार विरोधी एक प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार विपक्षी नेता को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलकराज भाटिया, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।